सो आपको मालूम है कि हम एक सीरीज में चल रहे हैं। कौन सी सीरीज है? हाँ? प्रभु यीशु मसीह के सात दावे। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना सुसमाचार में अपने सात दावे प्रस्तुत किए हैं, दिए हैं, मैं कौन हूं, और हम उसी को चला रहे हैं। और आज कौन सा दावा है? पांचवा दावा। वेरी गुड, पांचवा। सो पहले संडे हमने देखा था मैं कौन हूं, उसके बाद पहला दावा प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं, पहले देखा था मैं कौन हूं, उसके बाद मैं जीवन की रोटी हूं, दूसरा जगत की ज्योति हूं, तीसरा मैं द्वार हूं, चौथा मैं अच्छा चरवा हूं। सो अच्छा है, हम रोज हर बात दोहराएंगे और आपको याद हो जाएगा सात दावे, और ये अच्छा तरीका है याद करने का। और आज जो है यूहन्ना उसका 11 अध्याय, और इसी तरह से हम यूहन्ना के सुसमाचार का भी अध्ययन करते चले आ रहे हैं। यूहन्ना सुसमाचार के बहुत सुंदर सुसमाचार है। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य में एक था, और पिछले इतवार में बता रहा था कि लगभग उसकी आयु इस समय 80-85 साल की हो चुकी है। इसके बाद उसने क्या नाम से प्रकाश वाक्य लिखा और पत्रें भी लिखी, लेकिन वो इस सुसमाचार को अपने जीवन के अंतिम आयु के समय में वो लिख रहा है। और एक ही उद्देश्य है इस सुसमाचार का, वो उद्देश्य है कि लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें, लोग जाने यीशु मसीह कौन है और उसको पर विश्वास करें। ये बहुत जरूरी है, और सच में, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, अनोना है। और विश्वास करने वाले को ये विश्वास करना है परमेश्वर है, और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। इब्रानियों उसका 11 अध्याय पहला और 6 पद, इन दो पदों को भी याद करना चाहिए। और विश्वास परमेश्वर के वचन के सुनने सुनता है। सो आज भी जो हम आगे जा बढ़ना चाह रहे हैं, मुख्य पद 11 अध्याय उसका 25 पद है, यीशु ने उनसे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए फिर भी जिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, यह उसका पांचवा दावा है जो उसने अपने सेवा कालीन में दिया, और हम निरंतर रीति से देखते चले आ रहे हैं। जब हम यूहन्ना उसके 11वें अध्याय में आते हैं, तो यूहन्ना 11 अध्याय में एक घटना का वर्णन है, और यह घटना का वर्णन लाजर के जिलाए जाने का वर्णन है। चारों सुसमाचार में केवल यूहन्ना सुसमाचार ही ऐसा है जो लाजर का नाम लेके उसकी इस घटना का वर्णन करता है, और चारों सुसमाचार में केवल यूहन्ना सुसमाचार में 11 और 12 अध्याय है जिसमें हम लाजर के बारे में कुछ देखते हैं, और दो चित्रण लाजर के जीवन में हैं। सो आज हम जरूर पहला देखेंगे, और अगली बार प्रभु ने चाहा प्रभु की सहायता से हम दूसरा देखना चाहेंगे जो लाजर के जीवन के बारे में, और उस दिन भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 11 अध्याय एक अलग रीति से महत्वपूर्ण रखता है, 12वां अध्याय एक अलग रीति से महत्वपूर्ण रखता है। और जब हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे क्या इन दोनों में महत्वता है, और क्यों यूहन्ना ने बहुत ही सुंदर रीति से इसका वर्णन किया है। सो 11 अध्याय में काफी अध्याय है, काफी लंबा है, और बहुत सारे पद हैं, 57 पद हैं, लेकिन हम कुछ बातों को देखेंगे। अगर पूरे अध्याय को हम पढ़ते हैं तो इस अध्याय में करीब 7 अलग अलग प्रकार के लोग हैं जिनका मध्य में वार्तालाप चल रही है, जिनके हम विचारों को देख रहे हैं, जिनके हम विचारों को देख रहे हैं और जिनके हम व्यवहार को देख रहे हैं। पहले पद से लेकर 18 पद तक शिष्य हैं और लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं और लोग हैं। 19 पद से लेकर 26 पद तक मार्था है, मार्था लाजर की बहन है, मार्था मरियम लाजर ये तीनों भाई बहन है, और प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब भी बेतनी आते थे अधिकतर वो इनके घर में रुकते थे, और ये बहनें प्रभु यीशु मसीह का आदर सत्कार करती थी, सेवा व्यवहार करती थी। सो 19 पद से लेकर 26 पद तक 27 और 29 पद में मरियम के व्यवहार के बारे में देखते हैं, मरियम के व्यवहार के बारे में। और सुसमाचार में 3 अलग अलग स्थल हैं जहां मार्था के बारे में अलग वर्णन है और जहां मरियम के बारे में अलग वर्णन है। मार्था के जीवन का जब हम अध्ययन करते हैं तो मार्था सेवा भगत करने वाली महिला है, पौनाई करने वाली महिला है और हमेशा उसको हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे सेवा करते हुए पौनाई करते हुए पाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर यह भलाई थी पर निर्बलता थी। निर्बलता यह थी कि बहुत जल्दी वो व्याकुल हो जाती थी, बेचैन हो जाती थी और हताश होकर परास होकर के वो कहना चाहिए कि बहुत उतावले में होकर कुछ भी बोल देती थी। ये मार्था की कमजोरी थी। लेकिन मरियम के अंदर एक बहुत सुंदर बात थी कि मरियम को जब भी हम देखते तीनों बार वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में देखते हैं। मैं स्थल अभी दे दूंगा आपको जल्दी जल्दी। लेकिन अच्छा है जब हम इस 11 अध्याय को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। तो मार्था का जीवन है, मार्था लाजर की बहन है, मरियम मार्था लाजर तीन भाई बहन है जिसका इसमें विवरण है। फिर उसके बाद 30 से 37 पद तक हम प्रभु यीशु मसीह की भावनात्मक प्रेम को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देखते हैं जो इस परिवार से वो करता है, इस परिवार से। तब उसके बाद हम 38 पद से लेकर 43 पद तक लाजर के बारे में देखते हैं कि लाजर को प्रभु यीशु मसीह कैसे जिलाते हैं, जीवित करते हैं। अभी हम जाएंगे धीरे धीरे करके उन बातों को देखने जाएंगे। तब उसके बाद 44 पद से लेकर 46 पद तक हम अगुओं की प्रतिक्रियाओं को देखते हैं कि अगुए क्या प्रतिक्रिया करें सारी बातों के लिए, जो वहां के जो शास्त्रीय हैं, फरीसी हैं, यहूदी हैं, जो है किस प्रकार के उनका जीवन में प्रतिक्रिया हो रहा है। सो ये चीजें हम इसमें मुख्य देखते हैं जो 11वें अध्याय में है। लेकिन 12वें अध्याय में जब हम आते हैं तो 12वें अध्याय में हम लाजर की एक दूसरी स्थिति को देखते हैं जिसको आगे संडे में हम देखना चाहेंगे और एक मसीह जीवन के लिए उस दूसरी स्थिति को जानना बहुत ही अधिक जरूरी है, बहुत ही। तो आज हम लाजर की पहली स्थिति में जाना चाहेंगे कि लाजर की क्या स्थिति है, ठीक है। बीच बीच में मैं चलता जाऊंगा और आपको समझाने का कोशिश करूंगा और हम सीखने की कोशिश करेंगे। सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मेरे और आपको जीवन प्रदान करता है। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार न केवल जीवन प्रदान करता है लेकिन जीवन परिवर्तित करता है। जीवन प्रदान करता है, जीवन परिवर्तित करता है और यह सुसमाचार में शक्ति है, यह सुसमाचार में सामर्थ्य है। और इसलिए मुझे और आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्या वो जीवन जिसके लिए यूहन्ना उसके 10वें अध्याय में, जब हम पिछली बार हम देख रहे थे 10वें अध्याय उसके 10वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने के कई उद्देश्य व्यक्त किए हैं, उसमें एक उद्देश्य यह है कि मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और कैसा जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। और प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए संसार में आए और वही चीज को 11वें अध्याय में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो 10वें अध्याय में कह रहे हैं मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, कैसे 11वें अध्याय में इस चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो किस प्रकार से जीवन देने वाला प्रभु और परमेश्वर है। 11वें अध्याय में हम देखते हैं, पहले पद से मैं पढ़ना चाह रहा हूं, 11वें अध्याय पहले पद से कुछ पद पढ़ूंगा। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यहां पर मरियम का नाम है, मार्था का नाम है, लाजर का नाम है और उस स्थान का नाम है जहां के वे रहने वाले थे, बेतनिया। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु यीशु प्रभु पर इत्र डालकर उसके पैरों को अपने बालों से पोंछा था। यूहन्ना का वर्णन आगे करता है, अपने मैंने बताया कि मरियम को तीन बार हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठते पाते हैं। पहला लूका उसके 10वें अध्याय में है जब मरियम को देखते हैं, उसके 39 पद में प्रभु यीशु मसीह जब उनके घर में आते हैं, मरियम मार्था सेवा भगत करती है लेकिन मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उसके वचन को सुन रही है। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्था मार्था, मरियम ने जो भाग चुना है उससे वो कभी छीना नहीं जाएगा। क्या मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उसकी वाणी को सुनना, उसके वचन को सुनना, ये सबसे बड़ी आनंद और आशीष की बात है। प्रश्न ये है मेरे और आपके लिए, हम अपने व्यस्त जीवन में कितना अधिक समय निकालते हैं या प्रयास करते हैं या कोशिश करते हैं कि जब भी हमें अवसर मिले हम बैठ करके प्रभु के वचन को सुन सकें, प्रभु के वचन को पढ़ सकें, प्रभु के वचन को जान सकें, प्रभु के वचन को सीख सकें और हम प्रभु से कहें, प्रभु तू बोल क्योंकि तेरा दास तेरी दासी सुनता है। मरियम ने एक उत्तम भाग चुना था। दूसरी बात, हम मरियम को इस स्थल में देखते हैं जब आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं कैसे जाके प्रभु यीशु मसीह के चरणों में वो बैठती है। तीसरी बार 12 अध्याय में हम देखते हैं जहां पर इत्र को मरती है, अगली बार उस पर विस्तार से हम जाएंगे। तो तीन स्थल हम देखते हैं, मार्था के लिए भी, मरियम के लिए। मार्था सेवा करने वाली है, मरियम अधिकतर प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी वाणी को सुनने वाली है। जरूर सेवा करना बहुत अच्छा है, सेवा भगत करना, पौनाई करना बहुत जरूरी, परमेश्वर का वचन सिखाता है, लेकिन कई बार हम केवल सेवा ही सेवा करते रहे, पौनाई पौनाई करते रहे और अगर प्रभु के चरणों में ना बैठना सीखें तो हम भी मार्था की तरह उतावले हो जाएंगे, संयम खो देंगे और हमारा जीवन में कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए प्रभु के चरणों में बैठना बहुत अधिक अनिवार्य है। अब ये भाई के बारे में लिखा है, वो मरियम, दूसरा पद, इसी का भाई लाजर बीमार था। लाजर की हम स्थिति को देखते हैं, मैं पहले पांचों स्थिति को आप दिखा हम देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर मैं बात लाजर पर आऊंगा। लाजर की कंडीशन, पांच बातें लाजर के बारे में इस अध्याय में हम पाते हैं। पहली बात, मैं उसकी व्याख्या बाद में करूंगा। पहली बात, लाजर बीमार था। दूसरी बात, 11 पद में, ऐसा कहने के पश्चात उसने उनसे कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है। पहली बात, बीमार है, बीमार हो गया। अब उस दूसरी बात में, वो सो गया है। चौथे पद में, इस पर यीशु ने उनसे स्पष्ट कह दिया, लाजर मर गया है। लाजर मर गया है, लाजर बीमार है, लाजर सो गया है, लाजर मर गया है। 39 पद में, यीशु ने उनसे कहा, पत्थर हटाओ। उस मृतक की बहन मार्था ने उससे कहा, प्रभु अब तो उसमें दुर्गंध आती होगी, लाजर सड़ गया है। लाजर बीमार है, लाजर सो गया है, लाजर मर गया है, लाजर सड़ गया है। पांचवी बात, जब यह सब कुछ हुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसके बंधन खोल दो और उसे जाने दो। 44 पद, जी हां 44 पद, यीशु ने उनसे उत्तर कहा, उसके बंधन खोल दो और उसे जाने दो। पांच स्थिति, पहली स्थिति बीमार है, दूसरी स्थिति सो गया है, तीसरी स्थिति मर गया है, चौथी स्थिति सड़ गया है, पांचवी स्थिति बंधन में, बंधन खोल दो जान दो। अब ये बात भी इसमें व्याख्या में जाएंगे। ये लाजर की दशा है, क्या चीज चित्रण इस बात में है, क्या प्रभु सिखाना चाहते हैं वचन में, आगे बाद में हम जाएंगे। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए देखना चाहेंगे किस रीति से इन लोगों की प्रतिक्रिया हो रही है। मार्था का व्यवहार, 19 पद से लेकर कुछ पदों को हम देखना चाहेंगे। मार्था का व्यवहार 19 पद में, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में उन्हें संतावना देने आए थे। 20 पद, इसलिए मार्था ने जब सुना कि यीशु आ रहा है तो उससे मिलने गई, परंतु मरियम घर में ही बैठी रही। जैसे ही उसको मालूम चला कि यीशु आ रहा है, वो तुरंत मिलने गई। प्रभु यीशु मसीह जब उस स्थान पर आते, उनको पहले ही मालूम चल गया था कि क्या स्थिति है। लेकिन क्या हुआ था, हमने पहले 11 अध्याय के उसके 2 पद तक पढ़ा था, लेकिन मैं आगे चल के पढ़ना चाहूंगा, फिर हम वापस आएंगे। 30 पद में, इसलिए बहनों ने उसे संदेश भेजा, प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता है, किससे प्रीति रखता है, लाजर से, जिससे लाजर से तू प्रेम करता है, वो लाजर क्या है, वो बीमार है। अब प्रभु ने जब सुना तो क्या हुआ, परंतु जब यीशु ने सुना ये तो कहा, ये बीमारी मृत्यु के नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु तो मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था, फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहां दो दिन और ठहर गया। अगर वो प्रेम करता था तो उसको तो तुरंत दौड़ कर जाना चाहिए था, भाग कर जाना चाहिए था, अरे मेरा मित्र लाजर बीमार है, मुझे खबर मिली है, मुझे जाकर देना है। लेकिन क्यों प्रभु दो दिन वहां और रुक गए? इसलिए रुक गए वहां पर क्योंकि उसका उत्तर चार पद में लिखा हुआ है, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, कि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। क्या मतलब है? लोग जान सके परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कौन है, लोग जान सके परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के पास क्या अधिकार है, लोग जान सके परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया है, ये उस उद्देश्य को जान सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वहां ठहर गए। और वो ठहरने के बाद क्या हुआ? जितने दिन वो ठहरे थे, दो दिन, लाजर की स्थिति क्या हो गई थी? और खराब हो गई थी और लाजर मर गया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सब कुछ को जानने वाला परमेश्वर है। और जब ये हुआ तो क्या हुआ? पांच पद में यीशु तो मार्था और उसकी प्रेम करता था फिर भी ठहर गया। सातों पद, तब इसके पश्चात उसने चेलों से कहा, चलो हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उसे कहा, रबी, अभी तो यहूदी तुझे पथराव करना चाहते थे। अगर आप आठवें अध्याय में, नवें अध्याय में देखेंगे तो वहां पर लोग उसको पथराव करना चाहते थे। और क्या फिर तू वहीं जाना चाहता है? यीशु ने उत्तर दिया कि 12 घंटे एक जैसे नहीं होते। यदि कोई दिन में चले तो वो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो इस जगत के को प्रकाश को देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। ऐसा कहने के पश्चात उसने उनसे कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है। प्रभु को सब कुछ मालूम था। इससे पहले कि लोग उसको बताएं कि लाजर बीमार है, इससे पहले कि उसकी बहनें और दूसरे लोग आकर खबर दें कि वो मर गया है, इससे पहले कुछ वो सब कुछ जानता था, क्योंकि वो सृष्टि का प्रभु है। उसने लाजर की और मार्था की, मरियम की सृष्टि की है। वो जीवन को देने वाला और जीवन को लेने वाला प्रभु है। उसकी प्रभुता सर्वत्र ऊंची है। और यह मैं समझना है, प्रभु यीशु मसीह ये जानते थे कि मुझे वहां जाकर परमेश्वर के द्वारा की महिमा के लिए क्या कुछ करना है। लोगों के जो प्रश्न हो रहे थे पिछले दिनों में, हम बार बार देख रहे थे लोग किस प्रकार से वाद विवाद करते, प्रश्न करते, यीशु पर संदेह करते, ताकि लोग जान सके यीशु मसीह कौन है। और तब वो मित्रों को अपने उत्तर देता है। लेकिन जब सब कुछ हुआ, वो वहां पर पहुंचता है, मार्था आके उसको बताती है। मार्था उसके चरणों में नहीं गिरती। 22 पद, जब भी मार्था यीशु का, प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। उसके अंदर एक विश्वास है। लेकिन कैसा विश्वास है? यदि तू यहां होता तो उसको देखता तो चंगा कर देता, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है, अब तो मर गया है, तूने आने में देरी कर दी है। और कई बार हम अपने जीवन की जब परिस्थितियों में होकर चलते हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हम उन निर्बलताओं में होकर सामना करना पड़ते हैं कि हमारे सामने बहुत समय बार बार एक क्वेश्चन मार्क आता है, यह ऐसा क्यों हो रहा है? और हम कहते हैं, प्रभु तू जानता नहीं है, प्रभु अगर तू होता या तुम्हारे साथ रहता तो कहता है तो ये ऐसा नहीं होता, ऐसा हो जाता। और हम फिर कुछ ना कुछ तर्क अपने जोड़ देते हैं। ये मानवीय कमजोरी है जिसमें मैं और आप पाए जाते हैं। हमारा ध्यान अपने परमेश्वर से हटकर अपने ऊपर आ जाता है। लेकिन तब क्या हुआ आगे चल करके? प्रभु यीशु मसीह 22 पद में, अब भी मैं जानती हूं कि तू परमेश्वर से जो कुछ मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। एक विश्वास है। लेकिन आगे विश्वास कैसा विश्वास है? यीशु ने उसे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था क्या कह रही है? मार्था ने उसे कहा, हां मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं अभी की, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था सोच रही है, हां एक समय आएगा जैसा अय्यूब ने कहा, मुझे तो मालूम है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में मेरी आशा पूरी करेगा। यह सच है, उसको पुनरुत्थान पर विश्वास था। उस समय कुछ लोग थे जो पुनरुत्थान को मानते थे, कुछ लोग थे जो पुनरुत्थान को नहीं मानते थे, पर मार्था का विश्वास पुनरुत्थान पर था कि प्रभु यीशु मसीह में पुनरुत्थान है। और इसलिए वो कह रही है, वो ये नहीं कह रही है कि प्रभु आज जिला देगा, अभी कहा थोड़ी देर पहले, प्रभु यदि तू होता तो मेरा भाई ना मरता, तू उसको जीवन प्रदान कर देता, सब कुछ कर देता। अब कह रही है मैं जानती हूं तू अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय उसको जिलाएगा। तब प्रभु यीशु ने उसे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। 26 पद, और प्रत्येक जो जीवित है वो मुझ पर विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है? उससे कहा, उससे कहा हां प्रभु मैंने विश्वास किया है कि तू ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, अर्थात वो ही जो जगत में आने वाला था। यह अंगीकार किसी और ने भी किया था। किसने किया था? जब प्रभु यीशु मसीह ने पत्रस से पूछा था मत्ती उसके 16 अध्याय में, लोग मुझे ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं, तुम मुझे क्या कहते हो? पत्रस से कहा था तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यह अंगीकार था। मार्था भी इस अंगीकार को दोहरा रही है। वो कह रही है हाँ मैं जानती हूं तू परमेश्वर का जीवित पुत्र मसीह है, सब कुछ है जो आने वाला है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूं कि तू जीवन की बात कर रहा है तो जिलाने की बात कर रहा है, तो मैं जानती हूं कि तू पुनरुत्थान की बात कर रहा है, लेकिन अभी क्या होगा उसके अंदर वो विश्वास नहीं आ रहा है। तब 28 पद में ये कहकर वो चली गई, और तब उसके बाद उसने चुपके से अपनी बहन को बुलाकर कहा गुरु यही है वो तुझे बुलाता है। 29 पद, जब उसने सुना तो शीघ्र उठी और उससे मिलने चली, प्रभु यीशु से मिलने चली। 30 पद, यीशु अब तक गांव नहीं पहुंचा था, मार्था गांव से बाहर निकल गई थी और दौड़कर उसके पास मिलने आई थी, अब वो गांव में आ रहा है और गांव नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में जहां मार्था उससे मिली थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे संतावना दे रहे थे, जब उन्होंने मरियम को तुरंत उठकर बाहर जाते देखा तो समझ कर कि वो कब्र में रोने जा रही है उसके पीछे हो लिए। मरियम तो यीशु के पास जाने वाली थी, वहां जा रही थी, लोग कुछ और सोच रहे हैं। 32 पद, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, क्या कहने लगी? प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। दोनों बहनों का एक ही कथन है। मार्था भी कह रही है कि यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। मरियम भी कह रही है यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। लेकिन दोनों कथन में तरीके फर्क है। एक चरणों में बैठकर कह रही है, झुककर कह रही है, उसके पांव को झुककर कह रही है, उसके सामने अपने आप को समर्पण कर रही है, उसके सामने अपने आप को दीन बना रही है, नम बना रही है। दूसरी उतावले में होकर कुछ और सोचकर कह रही है। मेरे प्रियो, तब आगे चलकर हम क्या देखते हैं? यीशु अब तक गांव नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में जहां मार्था थी मिली। और 33 पद, जब यीशु ने उसे देखा, यीशु ने उसे देखा और उसके साथ आए यहूदियों को भी रोते देखा तो वो आत्मा में अत्यंत व्याकुल हुआ और दुखी हुआ। आत्मा में अत्यंत, कितना प्रेम था उसके अंदर। मार्था मरियम इस परिवार से कितना प्रेम करता था वो। प्रभु यीशु मसीह उसको देखकर दुखी हुआ, आत्मा में व्याकुल हुआ और दुखा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर थे, परमेश्वर हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर वो पूर्ण मनुष्य बनकर आए थे। उनके यहां वेदना थी, उनके अंदर पीड़ा थी, उसके अंदर वो सब कुछ था जो मनुष्य में था। केवल एक चीज नहीं थी, जो मनुष्य में पाप है वो यीशु में पाप नहीं था। वो प्यासा हुआ, वो थका मेरे और आपके समान, वो व्याकुल हुआ मेरे और आपके समान, वो दुखी हुआ मेरे और आपके समान, वो रोया मेरे आपके समान, उसने अपने भावों को कर अपने प्रेम को प्रदर्शित किया मेरे और आपके समान, सब कुछ। लेकिन एक चीज से वो अलग था, पाप से वो अलग था। और यहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण मनुष्यत्व को देखते हैं, जो किस प्रकार से वो मनुष्य बनकर लोगों के बीच में अपने जीवन को देने के लिए, अपनी सेवा को करने के लिए आया था। मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन पाओ, मेरे प्रियो। और तब क्या हुआ? और उसने कहा तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने कहा प्रभु चल कर देखे। 35 पद, बाइबल का सबसे छोटा पद माना जाता है। और यीशु रो पड़ा, यीशु रो पड़ा। क्या पीड़ा है, क्या वेदना है, क्या प्रेम है, क्या कुछ है। यह तो वास्तविक स्थिति को हम देख रहे हैं, पर लाजर का जीवन मुझे और आपको क्या सिखाता है, किस ओर ले जाता है, मुझे और आपको, प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाना चाह रहे थे, क्या दिखाना चाहते। ये बीमारी, उसने कहा यह बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए बीमारी है, यह शोक और दुख की बीमारी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए बीमारी। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो बीमारी स्थान लेती है कई अनेक अलग अलग तरीके से लेती है। कुछ बीमारियां पाप के कारण आती है, कुछ बीमारियां परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है, कुछ बीमारियां जो शायद परीक्षा के रूप में आती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी बीमारी भी हैं जो जिनके द्वारा परमेश्वर अपने नाम को, अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। यह निर्भर करता है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है, वो बीमारी क्या हमें परमेश्वर की निकटता में ला रही है। दाऊद कहता हुआ है, भला हुआ ये कष्ट, ये दुख, ये क्लेश मेरे पर आया जिससे मैंने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना सीखा। बीमारी हमें परमेश्वर से दूर नहीं करने के लिए होनी है, बीमारी हमें परमेश्वर के पास लाने के लिए, बीमारी हमें बेचैन और व्याकुल करने के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है और इसलिए हमें इस बात को देखना और जानना है। क्षमा कीजिएगा, मैं अपने परिवार का, अपने घर का उदाहरण दे रहा हूं, माफ कीजिएगा, परमेश्वर की महिमा के लिए। आप लोग जानते हैं 2008 में किस प्रकार से आंटी को बीमारी ने आक्रमण किया। सबसे बड़ा परिवर्तन उस बीमारी ने क्या लाया उनके जीवन में, सबसे बड़ा परिवर्तन उस बीमारी में, जो बहनें जानती हैं, बहन रितु ने बहुत समय दिया उस सेवा में, बहुत सारी बहनें जिन्होंने मदद करी समय जो समय आती, 2008 से लेकर 2013 तक 5 साल तक 3 बार उनको संजय में एडमिट होना पड़ा, 3 बड़े-बड़े पेट में ऑपरेशन हुए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, कोई आशा नहीं थी, मैं आशा छोड़ चुका था, बच्चे आशा छोड़ चुके थे, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन मैं एक चीज का धन्यवाद देता हूं जो उनके जीवन ने मुझे सिखाया, उनको बीमारी में कभी कुड़कुड़ाते नहीं देखा, कभी कुड़कुड़ाते, और उन्होंने एक बात सीख ली, जो प्रभु ने मुझे जीवन दिया है वो सेवा के लिए दिया है, मुझे सेवा करनी है। बीमारी हमारे जीवन में परमेश्वर की निकटता में लाने के लिए होना चाहिए। आपको मालूम है जब 2017 में मुझे बेल पाल्सी का अटैक हुआ था, प्रभु का धन्यवाद हो, 1 महीने परमेश्वर ने खड़ा किया। क्यों हुआ था? परमेश्वर ने मुझसे उन्होंने बातें की और मैंने पहला संदेश जब यहां पर अय्यूब से शेयर किया था, जिस अय्यूब से प्रभु ने मुझे बातें की थी। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में, परिवार में कठिनाइयां आ सकती हैं, बीमारी हो सकता है, आप बीमारियों का सामना कर रहे हो सकता है, आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हो सकता है, आपके सामने चिंता हो, अपने परिवार में किसी बच्चे को लेकर, पत्नी को लेकर, पति को लेकर, परिवार में किसी संबंधी को लेकर। मेरे प्रियो, प्रश्न यह है, आप कितना अधिक उस बीमारी के कारण परमेश्वर की निकटता में आ रहे हैं, कितना अधिक वो बीमारी आपको परमेश्वर की महिमा करना सिखा रही है, कितना अधिक वो बीमारी आपके विश्वास को बढ़ा रही है, कितना अधिक वो बीमारी आपको दिखा रही है कि परमेश्वर जीवित और सामर्थ्य है, वो अद्भुत परमेश्वर, प्राकृतिक परमेश्वर है, जो लाजर को जीवन दे सकता है वो आपको जीवन भी दे सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं इस लाजर के जीवन से एक दूसरे चित्रण को आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसको जब हम इस बात को समझते हैं तो समझने के बाद हम दूसरे स्थल में आकर देखने पाते हैं। यहां लाजर की बीमारी जो हम जिस बात को देख रहे हैं, ये लाजर की बीमारी, जब वो लिखा हुआ है कि वो बीमार था, बाइबल में, परमेश्वर के वचन में बीमारी पाप को भी प्रकट करती है, इस बात को समझना है, बीमारी पाप को प्रकट करती है। कुछ बीमारी हमारे जीवन में पाप को भी प्रकट करती है, और सबसे बड़ी बीमारी मनुष्य के जीवन पाप की बीमारी है, जो अदन की वाटिका में फैल गई और उसके बाद पूरे संसार में फैल गई, और जिस बीमारी ने, उस पाप ने मुझे और आपको घेर लिया। और ये पाप की बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि वो आदमी को न केवल बीमार बना देती है, लेकिन वो उसको सुन कर देती है, सुला देती है, उसको पाप का बोध नहीं होता, पाप की आदत बन जाती है, पाप का स्वभाव बन जाता है, पाप की इच्छा बन जाती है, पाप उसका खाना और पाप उसका पीना बन जाता है। ना केवल इतना, लेकिन वो पाप की बीमारी ना केवल उसके जीवन को सुन कर देती है लेकिन मृत्यु में पहुंचा देती है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में कहा है जो प्राणी पाप करेगा निश्चय मर जाएगा। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। बीमारी, ये बीमारी जो पाप की बीमारी है, मनुष्य को मृत्यु तक पहुंचा देती है। ना केवल मृत्यु तक पहुंचा देती है, वो जीवित दिखाई देता है, चलता और बैठता तो है, लेकिन उसके जीवन से सड़ाहट आने लगती है, बदबू आने लगती है। जब एक आदमी पाप के घेरे में आता है, उसका विवेक मर जाता है, उसका मन मर जाता है, उसका मस्तिष्क मर जाता है, उसकी भावनाएं मर जाती हैं, उसकी इच्छाएं मर जाती हैं, उसकी क्या आदत होती है। एक शराबी जो नशे की हालत में सड़क में जीवन को व्यतीत करता है, क्या होता है? सड़ाहट। एक पाप में आदमी जो अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा करता रहता है, गाली गलौज करता रहता है, पड़ोसी के सामने क्या है? सड़ाहट। जब मेरा और आपका जीवन पाप के कारण चोरी, छल, धोखा, झूठ, इन सारी चीजों में व्यतीत करता, क्या होता है? सड़ाहट। मेरे प्यो, पाप न केवल आदमी को बीमार करता है लेकिन दुर्दशा में पहुंचा देता है। प्रश्न यह है, क्या आप अपने जीवन में उस पाप की बीमारी के प्रति गंभीर हैं? पाप का कोई कार्य, पाप का कोई स्वभाव, पाप की कोई आदत, पाप की कोई इच्छा, पाप के कोई कार्य, या उसने आपको सुला दिया है, आप सुन हो चुके हैं? मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने जीवन में सचेत होना है, और ना केवल ये, लेकिन वो बंधन में बांध देता है। बंधन में, मैं अक्सर एक कहानी सुनाता हूं लोगों को, शायद यहां पर भी सुनाया होगा मैंने। एक मदारी था, याद दिलाना चाह रहा हूं, पहले सुना चुका हूं, और सड़क पर खड़ा होकर वो डमरू बजाता था और एक गले में बहुत लंबा सांप को, नाक को डाले रहता था, और सड़क पर खड़ा होकर के वो डमरू बजाता था, लोग भीड़ लगाते थे, और वो ऐसे दिखाता था कि ये नाग जो है, बड़ा नाग, उसको लपेट रहा है, उसको लपेट रहा है, और वो डमरू बजाता था और कहता बचाओ बचाओ बचाओ, वो एक्टिंग करता था, नाग लपेटता नहीं था लेकिन वो ऐसे एक्टिंग करता था, और लोग उसको पैसा देते थे, लोग ताली बजाते पैसा देते, आज यहां चौराहे पे तमाशा दिखा रहा, कल वहां चौराहे पे तमाशा दिखा रहा, परसों वहां चौराहे पे, और उसका ये जीवन का तरीका हो गया था कि नाग को लेकर चलता, डमरू को लेकर चलता और तमाशा दिखाता, लोग पैसा फेंकते और अपना काम। एक दिन वो इसी तरह से तमाशा दिखा रहा था, और जब उसने नाग को लपेटा हुआ था, अचानक से उसका पांव जो है नाग की पूंछ पर, दुम पर पड़ गया, और जब नाक की दुम पर पड़ गया तो उसके पांव से नाक की दुम पूंछ दबने लगी। अब यह सांप जो था, नाग जो था, बहुत गुस्से में आ गया, अरे रोज तो ऐसे करता है, आज ये मेरे को क्यों दबा रहा है? और उसने दबान जब दबने लगा तो नाग ने भी उसको दबाना शुरू कर दिया, अब उसने भी जकड़ना शुरू कर दिया, अब वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, लोग ताली बजा रहे हैं, लोग रोज के लिए देख रहे हैं, अरे ये तो तमाशा दिखाता है, और वो चिल्लाता रहा बचाओ बचाओ बचाओ, और थोड़ी देर बाद में वो गिर गया और मर गया। वो जो तमाशा दिखाता था उसी नाग ने उसके प्राण पखेरु कर लिए। मेरे प्रियो, ये पाप करता है, पाप मेरे और आपके जीवन को बांधता 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 चला जाता है, और एक दिन मेरे और आपके जीवन को नाशतम में पहुंचा देता है। इसलिए पाप को हल्के में मत लीजिए, पाप से खिलवाड़ मत करिए, पाप से समझौता मत करिए, पाप को अपने जीवन में गंभीरता से लीजिए। पाप एक भयंकर बीमारी है जो मनुष्य के विनाश का कारण बन जाती है, मनुष्य के बर्बादी का कारण बन जाती है। इसलिए मुझे और आपको सचेत होना है। मेरे प्रियो, ये लाजर की स्थिति थी, ये लाजर की स्थिति, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब मैं यहां पर, हम पढ़ते हैं इस बात को और इस प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है वो व्याकुल हुआ, वो दुखी हुआ, वो रोया। तीन बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो व्याकुल हुआ, वो दुखी हुआ, वो रोया। 33, 34 और 35 पद में, ये किसी की मृत्यु से प्रभु यीशु मसीह खुश नहीं होते, वो पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होते। ये जरूर यहां पर वो लाजर के साथ देख रहे हैं, लाजर से प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरी रीति से मेरे और आपसे भी, वो जब मैं और आप पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन विनाशता में चला जाता है, प्रभु यीशु मसीह दुखी होते हैं। क्या आपने सोचा कि उस यीशु ने जिसने आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, आपने कभी सोचा है कि वो कितनी बार रोया है? नए नियम में चार घटनाओं को हम पाते हैं, मैं उधर जाना नहीं जाऊंगा, लेकिन एक स्थल को दिखाऊंगा, चार घटनाओं को पाते हैं जब हम यीशु को रोते हुए देखते हैं। और सबसे बड़ी घटना जो है इब्रानियों उसके पांचवें अध्याय में देखिए, इब्रानियों उसके पांच अध्याय, यरूशलेम को देखकर रोया वो दो बार हम देखते हैं, लेकिन इब्रानियों उसका पांच अध्याय सात पद पढ़ी मेरे से, इब्रानियों उसका पांच अध्याय उसका सात पद, यहां पर क्या लिखा हुआ, किस प्रकार से ये उसकी पीड़ा देखिए, कह रहा है यहां पर, अपनी देह में रहने के दिनों में मसीह ने उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था उच्च स्वर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं और विनतियां की, और आज्ञाकारिता के कारण उसकी सुनी गई। जब वो गथसमनी बाग में था, गथसमनी बाग में जब अंतिम प्रार्थना पिता के साथ कर रहा था, जब उसने कहा, पिता यदि तेरी इच्छा हो तो कटोरा मेरे सामने से हटा ले, पर मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, और रात दिन वो मेरे और आपके पाप को अपने ऊपर लेकर वो रात भर रो रो कर उसने प्रार्थना की, रो रो कर प्रार्थना की, क्यों? वो मेरे और आपके जीवन से दुखी था, क्योंकि उस पाप के कारण मैं और आप मृत्यु में जा रहे थे, और पिता से कहता, हे पिता काश इस रॉली सिंह को तू बचा ले, पिता इस संतोष को तू बचा ले, पिता तू इस रजनी को बचा ले, पिता इस सुषमा को तू बचा ले, तू इसको बचा ले। और वो वहां पर मेरे और आपके लिए रो रो कर प्रार्थना कर रहा था कि मैं और आप बच जाएं। उसने वो पीड़ा सही, वो वेदना सही, वो दुख सहा। मेरे प्रियो, जब हमारा एक परिवार में कोई बीमार होता है या किसी ऐसी दशा में होता है, हम कितने व्याकुल बेचैन और रोते हैं। प्रभु को मेरे और आपकी केवल शरीर की चिंता नहीं थी, लेकिन उस आत्मा की चिंता थी जो अनंत काल पाप के कारण अनंत काल की आग में जाने की तैयार थी, और इसलिए उसने उस रात रो रो कर मेरे और आपके लिए प्रार्थना की। क्या हमने उस प्रार्थना को, क्या उसने इस वेदना को कभी समझा है? कितना अधिक हमने समझा, हमने क्यों मसीह के साथ मसीह को खिलवाड़ बना रखा है? केवल हमने सोच लिया हमारा उद्धार हो गया, इतना ही काफी है। क्या आज वो मुझे और आपको देखकर क्या रो नहीं रहा है? मेरा और आपका जीवन, मेरे प्रियो, कब तक हम उसको दुखी करेंगे? कब तक हम उसको व्याकुल करेंगे? कब तक हम उसको बेचैन करेंगे? कब तक हम यीशु को रुलाएंगे? पौलुस कहता, आज भी कितने ऐसे हैं जो अपने आचरण के द्वारा क्रूस के बैरी हैं। मुझे और आपको सावधान होना, सचेत होना। वो लाजर के कारण केवल चिंतित नहीं था, लेकिन लाजर तो वहां एक प्रतीक था, पर उसके सामने कितने लोग वहां खड़े हुए थे जो यहूदी थे, जो अपने आप पर गर्व करते थे। वो ये कह रहा था, तुम भी मर रहे हो और मैं तुम्हारे लिए आंसू बहा रहा हूं। मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन पाओ, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। ये उसकी पीड़ा थी, ये उसका दुख था, ये उसकी वेदना थी। लाजर को उसको जिलाना होता तो वहीं से बोल देता, जी जा, उसने कैसा करा भी है। लेकिन मेरे प्रियो, विशेष दूसरे से वहां पहुंचा था, और तब हम इसको देखते हैं, और इसलिए तब प्रभु यीशु मसीह पर कहते हैं 25 पद में, 11 अध्याय के 25 पद में, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए मेरे प्रियो, तीन प्रकार की मृत्यु है। पहली मृत्यु शारीरिक, क्योंकि हमने पाप किया और सब ने पाप किया इसलिए शरीर मट्टी है, मट्टी में मिलना है, दैहिक मृत्यु। दूसरी है आत्मिक मृत्यु, अनंत काल के लिए परमेश्वर के से दूर होकर नरक में आग में जलना। तीसरी मृत्यु जो अनंत मृत्यु है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहना। ना केवल वो मृत्यु आग में जलाएगी, भस्म करेगी, जलने के बाद भी जलने नहीं पाएंगे, मरने के बाद चार रखने के बाद भी नहीं मरने पाएंगे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति सदा काल तक अलग रहेंगे। वो सबसे दुखदायी मृत्यु है, वो सबसे दायित्व। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। क्या आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है? कब आपने विश्वास किया था प्रभु यीशु मसीह पर? कब आपने प्रभु यीशु मसीह से पापों की क्षमा प्राप्त करके उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया? आप सोचे शायद कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या एक महीने बाद कर लेंगे, अब ये निपटा लें, बच्चे की शादी हो जाए, फलाना हो जाए, ये घर हो जाए, परिवार ठीक हो जाए, ऐसा जाए, ये सोच सोच के करेंगे। क्या आप जानते हैं कि जीवन आपका कब तक है? नहीं। और फिर आपको मौका ना मिले? मेरे प्रियो, इससे बात की बिंदी रो जाए। तब आगे चल के कहता है वो फिर भी जाएगा, और प्रत्येक जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा। तब उसने प्रश्न पूछा, क्या तू इस पर विश्वास करती? उसने कहा, प्रभु मैंने विश्वास किया है कि तू ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मेरे प्रियो, क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास कि इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें? ना कोई और गुरु है, ना कोई और स्वामी है, ना कोई और दूसरा नाम है, कोई नहीं, यीशु मसीह एकमात्र प्रभु है। दुनिया कुछ भी कहे, कितने थ्योरी बनाए, कुछ बनाए, लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि यीशु के अलावा और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है। ये मुझे और आपको मानना, स्वीकार करना है, और ये जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। योना उसके तीसरा अध्याय दो पद पढ़ूंगा मैं आपके सामने, 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो कोई उस पर विश्वास करता वो दोषी नहीं ठहराया जाता। जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। वो दोषी ठहरा जा चुका है। यदि आपने उसका तिरस्कार कर दिया, यदि आप उसका इनकार कर रहे हैं, तो निर्णय आपके ऊपर आ गया। यदि आपने उसको स्वीकार किया है, उस पर विश्वास किया है, तो आप सकारात्मक निर्णय आ गया कि प्रभु अब आपको दोषी नहीं ठहराएगा क्योंकि उसने आपका मेरा दोष अपने क्रूस के ऊपर ले लिया, क्रूस पर ले लिया, और इसलिए मुझे और आप पर आपको विश्वास करना है। सो प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जीवन दिया। लाजर को जीवन देना कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं था। उसको जिलाना बहुत बड़ा आशीर्वाद। उससे पहले भी 3 अलग अलग स्थलों में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को जीवन दिया, इसलिए क्योंकि वह जीवन का प्रभु है। उसने संसार की सृष्टि किया है, उसने मेरे और आपके जीवन में श्वास डाला है, सब कुछ उसका। वो जो कुछ शब्दों से कहता है वो हो गया, वो सब कुछ का प्रभु है। इसलिए लाजर को जिलाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसके द्वारा वो ये दिखाना चाहता था, सिखाना चाहता था कि हम यीशु को जान सके जो केवल शरीर के जीवन की चिंता नहीं करता लेकिन वो आत्मिक जीवन की चिंता करता है कि इस मृत्यु के बाद जीवन मेरा क्या क्या है, और उसको देने के लिए आया। और इसलिए जिन्होंने उस पर विश्वास किया है परमेश्वर ने उनकी पापों की क्षमा की है। मेरे प्रियो, इसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। लेकिन फिर भी ठीक है, हमने विश्वास कर लिया, प्रभु ने हमारे पाप क्षमा कर दिए, पर क्या आज मैं उस विश्वास के साथ उस जीवन को जी रहा हूं जो सच में एक जी उठा जीवन है, जिसके बारे में कल अगली बार हम थोड़ा सा व्याख्या में देखेंगे। लेकिन जानिए, वो जीवन जो परमेश्वर की महिमा करने वाला जीवन है, इसके जीवन के द्वारा किसकी महिमा होगी? बीमारी द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। क्या मेरा और आपका जीवन परमेश्वर की महिमा के कारण बना हुआ है? हम किस प्रकार से अपने जीवन को कर रहे हैं? संसार में हम हैं, संसार में हमें नौकरी करनी है, संसार में हमें भोजन चाहिए, संसार में हमें रोटी चाहिए, संसार में हमें कपड़ा चाहिए, संसार में हमें मकान चाहिए, चाहिए ये। लेकिन यही सब कुछ अगर हमारे लिए प्राथमिकता बन जाए और इसी की खोज में हम सब कुछ अपना जीवन बर्बाद कर दें और तब हम प्रभु को ना खोजें और प्रभु को हम दूसरे स्थान पर रखें, तो गलत है, गलत है। 10 साल प्रभु में आने के बाद, प्रभु की दया से मैं एचएल में सर्विस करता रहा और पूरे जब तक सर्विस था, रिकॉर्ड मैंने केवल 2 घंटे बहुत बाध्यता में ओवरटाइम किया। क्यों? कोई चर्च सर्विस में नहीं छोड़ना चाहता था, कोई बाइबल अध्ययन में नहीं छोड़ना चाहता था, कोई प्रभु की सेवा को मैं नहीं छोड़ना चाहता था। अभी हम नॉर्थ ईस्ट से आते भाई आशीष मेरे साथ थे, उनसे पूछेगा किस प्रकार से लोग अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पद पर, औहदों पर, अच्छे अच्छे ऊंचे पद पर, औहदों पर, किस प्रकार से कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, एक साक्षी का कारण था। शायद जब हम अपने जीवन के बारे में बोलते हैं तो हमें अपने में बहुत हम पीछे लगते हैं। क्यों? हमने उद्धार पा लिया, काफी हो गया, बाकी जीवन क्या? क्या मेरा और आपका जीवन प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा कर रहा है? क्या उसके द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा हो रहा है? क्या उसकी योजना पूरी हो रही है? क्या उसकी इच्छा पूरी हो रही है? हमारे जीवन के कार्य के द्वारा, हमारे जीवन के व्यवहार के द्वारा, हमारे जीवन के साक्षी द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, ये बीमारी परमेश्वर की महिमा का काम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से केवल एक चाहता है, चाहे मैं 1 साल जीऊं, चाहे मैं 10 साल जीऊं, चाहे मैं 20 साल जीऊं, मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे आपकी सहायता करें। क्या आज हम आत्मिक रीति से बीमार तो नहीं है? कौन सी बीमारी है जिससे मुझे यीशु से चंगाई पानी है? प्रभु दया कीजिए, प्रभु मैं क्षमा मांगने तैयार हूं, मुझे आप चंगाई दे दीजिए, मुझे आप स्वस्थ कर दीजिए, मुझे जीवन दे दीजिए। बदबू नहीं चाहता हूं, सड़ाहट नहीं चाहता हूं, बंधन नहीं चाहता हूं, सोना नहीं चाहता हूं, मृतक नहीं चाहता हूं, मैं आपका जीवन चाहता हूं, आपका जीवन चाहता हूं। प्रभु सहायता करें।